محسوس بدھ تک تمام آپریشن تھیٹر ریزرو ہے. آپ جمعرات کو آپریشن کر سکتے ہیں؟
نہیں، جمعرات کو دیر ہو جائے گی، مریض کے لیے خطرناک ہے. بدھ کو کتنے آپریشن ہیں؟
اجازت دیجیے. دو عدد.
آپریشن کون کرے گا؟
ڈاکٹر نائنی کے مریض ہیں.
چلو ٹھیک ہے، تو تم ایک کام کرو، ڈاکٹر نائنی سے کہو کہ اپنی رائے کے مطابق اپنے ایک مریض کا جمعرات کو آپریشن کریں. بتا دینا کہ پرویزی صاحب کو آپریشن ضروری ہے.
یقیناً ان کو اطلاع دے دوں.
ضرور. خدا حافظ.
خدا حافظ.
میں اپنا کوئی آپریشن جمعرات کو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جمعرات کو ایران میں نہیں ہوں.
اچھا، تم منگل کو کر لیں.
یعنی تم واقعی نہیں جانتے کہ منگل کو آپریشن تھیٹر فل ٹائم مصروف ہے؟
میرا خیال ہے اپنے سفر کو کینسل کر دیں، اس لیے کہ بہرحال مجھے بدھ کو آپریشن تھیٹر چاہیے.
میں نے تمہارے مریض کی فائل دیکھی ہے، اسی پرویزی صاحب کی بات کر رہا ہوں. ان کے فوری آپریشن کی کوئی ضرورت تو نہیں لگ رہی ہے مجھے.
آپ کی تشخیص غلط تھی ڈاکٹر صاحب.
چوہان، جمعرات کو جاؤں گا تو اگلے ہفتے پیر کو واپس آؤں گا. منگل کے روز پیسے تیار رکھنا، اس لیے کہ میرے شیئر خریدنا ہوں گے.
آسان کام نہیں ہے، لیکن بندوبست کر لوں گا، بڑی رقم ہے. بہرحال آپ نے بہت صحیح فیصلہ کیا. مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ کھانے کی بو پوری گلی میں پھیلی ہوئی ہے.
میں افطار کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا.
تو کیا افطار یہاں کرو گی؟
جی ہاں.
کوئی ضرورت نہیں. اچھی بات نہیں ہے کہ تم یہاں اکیلی رہو.
میں باغ والے گھر میں نہیں جاؤں گی.
ناؤ، میں تمہیں نیرا پھوپھو کے گھر چھوڑ دوں گا، جب تک چاہو وہاں رہنا.
میں وہاں پر آرام سے نہیں ہوں، میں اپنے گھر پہ رہنا چاہتی ہوں. کیا اس میں کوئی مسئلہ ہے؟
ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہیں تمہارے حال پر نہیں چھوڑ سکتا.
کیوں؟
اس لیے کہ تم پر اعتماد کرنے پر مجھے پچھتاوا ہے. میں اس پتے پر گیا تھا جو تم نے دیا تھا تحقیق کے لیے. ابھی وہیں سے آ رہا ہوں. کچھ ہاتھ نہیں آیا. جب اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر ہر کسوناکس سے دوستی کرو گی तो इस दिन की तौको भी करनी होगी।
मैंने किसी से दोस्ती नहीं की है अब्बू, आपने उनके बारे में क्या जाना?
वही चीजें जिसकी तौको थी, वही चीज की जिसे तुम भी समझ सकती थी लेकिन नहीं समझी, इसलिए कि तुम पर जज्बात गालिब आ गए थे।
किससे बात की आपने?
उसके कुछ हमसायों और वहाँ के दुकानदारों से। पहले तो बात करने से डर रहे थे, लगता है इस मूसी साहब और उनके अब्बू ने इलाके में काफी दबदबा बिठा रखा है, साहब उनसे डरते हैं।
लेकिन आपसे क्या कहा?
लोग बता रहे थे कि ये लोग बहुत ही कट्टर मजहबी घराने के हैं, कह रहे थे कि इन साहब का ख्याल है कि औरत को घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए, उसकी आवाज भी शोर के अलावा कोई और न सुने। बता रहे थे कि उनके इसी तर्ज फिक्र की वजह से उनके साथ दोस्ती छोड़ दी।
मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, अगर उनका तर्ज फिक्र यही है तो मेरा रिश्ता लेकर क्यों आए? वो मुझे जानते हैं कि मैं इन हालात में जिंदगी नहीं गुजार सकती हूँ।
तुम्हें जानता है, तुमने तो कहा था कि उसके साथ दोस्ती नहीं है, वो कैसे जान सकता है तुम क्या सोचती हो? हाँ
अबू, यही जो मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो पता है कि मैं कैसा सोचती हूँ, कम से कम जान सकता है कि मैं वो नहीं हूँ कि जिसे वो घर में कैद कर ले। इसके अलावा क्या ये तय है कि एक दूसरे को जानने से पहले और एक दूसरे की सोच से आशना होने से पहले हम निकाह कर ले?
ये तुम कैसे कह सकती हो? शायद तुमसे शादी करने से पहले वो एक्टिंग कर रहा है उसी तरह से जैसे अब तक की है उसने।
आखिर किस लिए?
ताकि तुम्हें धोखा दे। यकीनन वो सोचता है कि तुमसे शादी करने के बाद वो तुम्हें ऐसी औरत में तब्दील कर सकता है जैसी वो चाहता है। बहरहाल अगर उससे शादी करोगी तो इतनी आसानी से उससे तलाक नहीं ले सकोगी। परी, हो सकता है तुम्हें पूरी जिंदगी चार दीवारी के अंदर गुजारनी पड़े और बूढ़ी हो जाओ तुम मूसवी की अम्मी की तरह। उसके हमसाये कह रहे थे कि वो घर से पांव बाहर नहीं निकालती, आज तक कोई भी उसे कायदे से नहीं देख सका है। मुझ पर एतमाद करो परी, उससे इनकार कर दो।
मूसवी साहब की पैदाइश के वक्त उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। तो आप तहकीक के लिए गए ही नहीं, ये सब बातें अपनी तरफ से कहे हैं ना?
नहीं नहीं, बस वही एक हिस्सा झूठ, सिर्फ यही, लेकिन झूठ भी नहीं है, मैंने अपनी सोच बयान की है क्योंकि मुझे यकीन है कि मूसवी की वालदा जिंदा होती तो ऐसा ही होता।
अम्मी की रूह की कसम खाई के तहकीक के लिए गए थे?
यानी तुम सोचती हो कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? हाँ? मैं अभी तेहरान पार से आ रहा हूँ और जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है।
तो कसम खाइए।
क्यों, किस लिए, क्यों मैं उस फजूल लड़के के लिए मौलूद की रूह की कसम खाऊं? क्यों क्यों?
उसके लिए नहीं, मेरे लिए कसम खाइए ताकि मैं आपकी बात का यकीन कर लूं और कल ही मूसवी साहब को ना कहूं।
ठीक है ठीक है, मौलूद की रूह की कसम।
की खातिर आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, वो भी कितनी आसानी से, एक पेशावर झूठ बोलने वाले की तरह। यानी इलियास आपके लिए इतना अहम है अबू?
इलियास नहीं, इलियास नहीं, तुम मेरे लिए अहम हो। झूठ इसलिए बोला कि मुझे यकीन है कि अगर तुमने मुझसे से शादी की तो बर्बाद हो जाओगी, ऐसे ही मुझे यकीन है कि अगर इलियास से शादी करोगी तो खुशकिस्मत रहोगी। लेकिन मैं ये जो कह रहा हूं इसका सबूत नहीं है मेरे पास। परी, तुम्हें मुझ पर एतमाद करना चाहिए, यकीन करो मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, बहुत ही चाहता हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरा मेरा सब कुछ हो, तुम सब कुछ हो।
आपने तो खुद को जहमत नहीं दी कि मेरे मुस्तकबिल के लिए कदम ही उठा ले और मुझे के बारे में तहकीक करे, और उस वक्त कहते हैं कि मैं आपकी पूरी जिंदगी हूँ। वाकई मुझे हक खेज है।
हाँ, मैं तहकीक के लिए नहीं गया, इसलिए जरूरी नहीं था। झूठ बोला इसलिए कि मैं जानता हूँ कि मेरी कमकल बेटी सही फैसला नहीं कर सकती। मरी, मैं कुछ चीजें जानता हूँ जो तुम नहीं जानती, मैं कुछ चीजें जानता हूँ जो कोई भी नहीं जानता। ये जान लो, ये समझ लो।
इसीलिए आपने सोचा कि मैं आपकी झूठ की बातों पर यकीन कर लूंगी, इसलिए कि सादा लो और कमक लो।
तुम्हें मूसवी से राबता खत्म करना होगा, वरना
मेरा किसी के साथ राबता नहीं है अब्बू। पता नहीं अब्बू आप ऐसे क्यों हो गए हैं। आप तो झूठ नहीं बोलते थे, आपको तो कुछ इत्मीनान था। मैं इतनी भी सादा लोर का मकल नहीं हूं कि ना समझू कि खेल किस लिए है। अपने आप को इतनी सहमत ना दे, अपना रोजा झूठ से ना तोड़े, इत्मीनान रखिए। अगर मैंने मूसवी साहब से शादी ना भी की तो इलियास से शादी हरगिज नहीं करूंगा। हत्ता अगर पूरी जिंदगी कुंवारी रहूं।
वालेकुम नसीम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। नहीं, मुझ में मेहमान की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। अगले हफ्ते भी मसरूफ हूँ, नहीं आ सकती। देखो नसीम, मैं अब इस कस्म की दावत में नहीं आना चाहती, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम उसे कह दो मैं मसरूफ हूँ, अगर हो सका तो मैं खुद उसे फोन कर दूंगी। ठीक है, ओके, अदा।
वाह वाह, मैं अपनी प्यारी बेटी की कुर्बान जाऊं। अलबत्ता ध्यान रहे कि घर में इतना ना बैठना कि तुम बोर हो जाओ। तुम्हें अपने आप को मसरूफ रखना होगा, आर्ट, स्विमिंग, लैंग्वेज या और कोई सी भी क्लास, जो भी दिल चाहे मुझे बताओ, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूं।
नहीं, मैं पढ़ना चाहती हूँ, सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ। अच्छे नंबरों से एंटर करना चाहती हूँ, मैं टॉप करना चाहती हूँ। लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि जब मैंने एंटर कर लिया तो मुझे आला तालीम के लिए बाहर भेज देंगे। वादा करते हैं अब्बू। अब्बू को मुझ पे इत्मीनान नहीं है ना?
ये कैसी बातें कर रही हो बेटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अब्बू सोचते हैं कि अगर मैं बाहर गई तो दोबारा बुरी लड़की बन जाऊंगी। ठीक ही कहते हैं, लेकिन इन दो बरसों में आप पर साबित कर दूंगी कि मुझ पर एतमाद किया जा सकता है। अब मैं वो पहले वाली लड़की नहीं बनूंगी, वो रोज जो आपको नाराज करती थी मर गई। मैं अच्छी अम्मी को कुर्बान जाऊं जिससे मैंने इतनी तकलीफ दी।
अरे बक्कूंगी, जो मन्नत मानी थी कुर्बानी कर दी।
अभी नहीं,
इतनी सहलंगारी क्यों कर रहे?
ठीक है भाई, मैं अपने आदमी से कहता हूँ कि ये काम कर दे। आतिफा, ये बच्ची वाकई सही कह रही है।
अरे भाई, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं, बिजनेस और लेन देन में तो तुम्हारी आदत हो गई सब पर शक करने की, कि बेटी पर भी शक कर रहे हो। अरे भाई, वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी फरीक नहीं।
पता नहीं, समझ में नहीं आता क्या।
चले चले, चले। भाई ये डॉक्टर साहब तो बहुत ही अच्छे हैं। मैंने शुरू ही में गलती की कि आपकी बात नहीं सुनी। पता ना करें।
आप लोग जाएं गाड़ी में बैठे, मैं भी आता हूँ वहाँ पे।
अच्छा जल्दी आ जाना।
माफ कीजिए।
कोई बात नहीं, जाइए।
अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। नशे को तर्क करना मुकम्मल तौर पर मरीज के हौसले और उसके इरादे से वाबस्ता है।
वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि यही इरादा जो आपने फरमाया रोज में आपने देखा या नहीं।
देखिए, हम इलाज के दौरान सदाकत और सच्चाई पर बुनियाद रखते हैं। अब अगर आप इन सवालों से मुतमईन होना चाहते हैं कि लड़की तर्क कर देगी या नहीं और मुझसे जमानत चाहते
हैं। नहीं 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 डॉक्टर साहब, देखिए इस वक्त इस मामले पर मुतमईन नहीं हुआ जा सकता। ठीक, मैंने कोई जमानत भी नहीं चाही, सिर्फ ये देखना चाहता था कि यही सदाकत जो आप फरमा रहे हैं रोज में पाई जाती है या नहीं।
असल में जो उसकी हालत थी और जो बातें वो कर रही थी, हाँ मेरा ख्याल है इस वक्त तर्क करने का इरादा रखती है। लेकिन क्या आप कुछ और सोच रहे हैं?
नहीं, समझ में नहीं आता। मैं ये सोच रहा हूं कि कहीं ये सब कुछ हमें दिखाने और ड्रामा करने के लिए ना हो, ताकि हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश करें।
मुझे बहुत बईद लगता है कदियानी साहब, मेरी नजर में सिर्फ शैतान इतना अच्छा ड्रामा कर सकता है।
पता नहीं, बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं।
अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
हमारे आबाई घर, हम तीनों मुखलिस हैं। अम्मी जान कल मैं रोजा रखना चाहती हूँ, सैनी में मुझे उठाइएगा। हाँ
नहीं बेटी, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, अगले साल रख लेना।
लीजिए अबू, मैं इंसान बनना चाहती हूँ, अम्मी नहीं बनने देती।
रोज
जी,
तुम अच्छी बेटी हो। मुझे तुम पर फख्र है बेटी।
ऐसे ना कहिए, मैं गुस्सा हो जाऊंगी।
परेशान ना हो डॉक्टर, वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने गलती की है।
नहीं समझ रही है, नहीं समझ रही है। हम उसे मुसीबत में फंसने से पहले बचाना चाहते हैं, लेकिन मुझे डर लग रहा है तो कभी ना समझे।
मेरा ख्याल है कि लोगों के लिए बास चीजों को समझना बाद मौके पर बहुत महंगा साबित होता है।
जानता हूं, लेकिन काश काश उसके सामने वजाहत की जा सके, काश हम उसे समझा सकें।
किसी भी तरह से उनको नहीं समझाया जा सकता, वो जज्बात में घिरी हुई है डॉक्टर। डॉक्टर साहब आप उन्हें हक दें, आपने जो भी जरूरत है उनके लिए अंजाम दिया। आपको परी साहिबा पर दबाव नहीं डालना चाहिए, शायद हम मजबूर हो जाएं कि खुद मूसवी के पास जाकर उससे बात करें।
किस लिए?
शायद जरूरी है कोई उसे मजबूर करें कि वो मामले को खत्म करे।
मैंने रोजा रखकर झूठ बोला इलियास। मैंने परवेजी के अहलिया से कहा कि मैं उसके शौहर का हाई स्कूल का दोस्त हूं, कि शायद वो राजी हो जाए और हमारे अस्पताल लेके आए। शाम को फिर मैंने झूठ बोला, वो भी परी से, जिसे मैंने हमेशा झूठ बोलने से मना किया। मैंने
मजबूर थे डॉक्टर, मजबूर थे, इसलिए कि एक इंसान की जान का मामला है। आप क्या कहना चाहते थे? हाँ, ये कहना चाहते थे कि आलम-ए-गैब से मुझे खबर मिली है कि मैं आपके शौहर का ऑपरेशन करूं, जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूं, है? ये कहना चाहते थे? परी से भी झूठ कहना चाहिए था, क्योंकि आप उसे बचाना चाहते थे, उसकी जिंदगी को बचाना चाहते थे। अगरचे नहीं कर सके, क्योंकि आप झूठ बोलना नहीं जानते।
मैं ये सब जानता हूं इलियास, सुबह से अब तक हजार बार ये सब कुछ सोच चुका हूं, लेकिन सुकून नहीं मिलता। मुझे अपने आप से घिना रही है, अपना आप मुझे बुरा लग रहा है।
बाज़ औक़ात एक झूठ आदमी की उतनी मदद कर सकता है जितनी और कोई चीज नहीं कर सकती डॉक्टर। बहुत से मौके पर आदमी नादानी और नासमझी की वजह से अपनी जिंदगी को तबाही की तरफ ले जाते हैं, और किसी भी तरह से उनकी मदद नहीं की जा सकती सिवाय एक झूठ के, एक मसलियती झूठ।
तो फिर ये जो अखलाकियात है, ये जो दीन है, ये जो शरई अहकाम है, ये सब हमसे कहते हैं कि हमें सच्चा होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए।
हम नहीं डॉक्टर, हमारी शरह आवाम की शरह नहीं है, मेरी और आपकी शरह के खास कायदे और कवानीन हैं। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, याद नहीं है? वो चीजें जो फिक्र किताबों में लिखी हुई हैं डॉक्टर, वो अमून नास के लिए हैं। कहते हैं कि झूठ ना बोलो, क्योंकि वो नहीं जानते कि कैसे झूठ बोलना है और कब नहीं बोलना है। लेकिन आप अलग हैं, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए। परी तो आपकी जान है, अगर कोई बहुत ही अजनबी आदमी भी होता तो उसकी जान बचाने के लिए आपको झूठ बोलना ही पड़ता।
तो फिर मेरी हालत क्यों नहीं अच्छी है? क्यों मेरा जमीर कचोके लगा रहा है?
آپ کو اپنے آپ پر یقین نہیں ہے۔ ابھی آپ کو اپنے آپ پر ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے کہ آپ کا انتخاب ہوا ہے، ایمان نہیں ہے کہ چنے گئے ہیں۔ خدا بہت سی چیزیں آپ کو بتا رہا ہے جن کے بارے میں سب بے خبر ہیں، لیکن اس کے بدلے میں آپ ذمہ دار ہیں ڈاکٹر، ان چیزوں کے بارے میں آپ ذمہ دار ہیں ڈاکٹر، خدا کے لطف و کرم کے سلسلے میں ذمہ دار ہیں۔ آپ کو وہ تمام کام انجام دینے ہوں گے جو آپ سے کہے گئے ہیں اور جن کی خاطر آپ کا انتخاب ہوا ہے، حتیٰ اگر بہت سخت ہو ڈاکٹر، حتیٰ اگر بہت سخت ہو۔ خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں، خدا کے لیے اپنے آپ کو ان فقہی کتابوں میں لکھی گئی چیزوں کا اسیر نہ بنائیں ڈاکٹر۔ آپ بہتے ہوئے پانی کی مانند ہیں کہ جو بھی نجس چیز اس میں ملتی ہے پاک ہو جاتی ہے۔ جو بھی کام آپ انجام دیں گے، حتیٰ اگر وہ عوام الناس کے لیے گناہ ہو، تو آپ کے لیے عین ثواب ہے ڈاکٹر۔
سلام باجی، اسے کیا ہوا؟
سر پر چوٹ لگی ہے۔
آپ کہاں ہیں؟
اندر۔
بچ جائے گا یا مر جائے گا؟
اس طرح نہ کہو بھائی۔
آخر میری بہن، میں تو تجھ پر حیران ہوں، آخر کس لیے اس گھٹی آدمی کی حمایت کر رہی ہو اور اس کی پشپناہی کر رہی ہو؟ کس لیے؟
میرا شوہر ہے۔
میرا شوہر ہے، اب مجھے کیوں بلایا ہے؟
کچھ پیسے چاہیے۔
اچھا ہے بلا، جس کا شوہر خزانے پر بیٹھا ہو وہ عورت پیسوں کے لیے ادھر ادھر بھاگتی پھرے اور اس کو پیسے بھی نہ ملے۔ کس لیے چاہیے؟
یہاں پر علاج اور دواؤں کے لیے، پرائیویٹ ہے، زیادہ خرچ آئے گا۔
آخر تم نے کس بنا پر کہا ہے میری بہن؟
اس بنا پر کہ میرے بھائی ہو۔
تم تو خود اچھی طرح جانتی ہو کہ میں اس بدبخت کا ڈسا ہوا ہوں۔ میری ساری سوچ اور فکر یہ ہے کہ اس کی قسط بر وقت ادا کر دوں۔ اب تم چاہتی ہو کہ میں اس کے مرنے کے لیے پیسے جمع کروں؟ جہنم میں جائے مر جائے، ایک سود خور کام ہوگا۔
یہ ٹھیک ہو گیا تو تمہیں واپس کر دے گا، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ تمہارا قرض معاف کر دے۔
یہ گھٹیا آدمی اگر پیسے دینے والا ہوتا تو اپنی بیوی کو خالی ہاتھ نہ رہنے دیتا۔ جاؤ اسے کسی سستے اسپتال میں لے جاؤ تاکہ مر جائے اور تمہارا دل خوش ہو جائے۔
میں اسے واپس لے جانے کے لیے یہاں نہیں لائی ہوں۔
جو بھی لے کر آئے ہو اسے کہو اسے اٹھا کر لے جائے۔
ایک ڈاکٹر صاحب لے کر آئے ہیں، کہا ہے کہ اسپتال کا خرچہ بھی دیں گے اور مفت آپریشن بھی کریں گے۔
دیکھو کہیں اس ڈاکٹر صاحب نے گدھے کا دماغ تو نہیں کھایا جو اس کے دماغ کا مفت آپریشن کرنا چاہتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ اس کے ہائی اسکول کے دوست ہیں۔
ہائی اسکول؟ یہ آدمی پڑھا لکھا ہوتا تو کاغذوں پر انگوٹھے کے نشان نہ لگاتا۔ جاؤ اسے کہہ دو کہ ڈاکٹر صاحب آپ سے غلطی ہوئی ہے، اس آدمی نے علم اور پڑھائی سے صرف ڈسکاؤنٹ، چیک اور سود سیکھا ہے، सिर्फ यही
गलती नहीं की है।
क्या मतलब?
झूठ बोल रहा है भाई, मैंने उसकी आंखों में पढ़ा है। ये डॉक्टर कुछ ऐसा है कि मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। नहीं चाहते कि मनुष्य का खर्च उठाए।
कौन है, कहाँ है? मैं जाकर कहता हूँ कि हमारे मामले में ना पड़े।
नहीं भाई, उससे कुछ ना कहो। लोग कहते हैं कि अपने काम में माहिर है, बेहतरीन सर्जन है, शायद वो मनुचर को बचा सके।
अच्छा है वल्ला, खुदा तुम्हें मौका दे। तुम्हें उसने इतनी तकलीफें दी, आखिर में उसका काम डॉक्टरों की आस से जुड़ गया। मेरी बहन, तुम किस लिए चाहती हो कि ये सूदखोर आदमी जिंदा रहे और बच जाए? इसका सांस बंद होकर इसे मरने दो, सवाब कमाओगी, सवाब। लोग तुम्हें दुआ देंगे।
गुनाह और सवाब का हिसाब किताब खुदा का काम है, ना कि मेरा और तुम्हारा। मेरा फर्ज है कि मैं उसकी मदद करूं, क्योंकि उसकी बीवी हूं। मेरे भाई, पैसे दे दो प्लीज, ताकि शर्मंदगी से बच जाऊं। अगर बच गया तो मैं मजबूर करूंगी कि वापस कर दे, अगर नहीं दे तो मैं खुद इंतजाम करके तुम्हें वापस दे दूंगी।
क्या करूं कि मैं तुम्हारा गम और परेशानी नहीं देख सकता बच्चे? तुम तो जानती हो कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कुछ इधर उधर से लेकर इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ।
यकीनन आपने गलत सुना है मैडम अलीपुर।
नहीं डॉक्टर साहिबा, मैंने उसकी बातें बिल्कुल साफ सुनी है, वाज़े।
कैसे मुमकिन है कि वो किसी और अस्पताल जाएं और एक ऐसे मरीज को जिसे वो बिल्कुल नहीं जानते यहाँ लाएं, अपने खर्च से इलाज करें और उसकी खातिर झूठ भी बोलें? क्या ये अकल की बात है?
नहीं,
यकीनन आपने गलत सुना है अलीपुर साहिबा। मैडम अलीपुर, हर कोई अपनी मसलहत बेहतर तौर पर जानता है। डॉक्टर पजुहान भी अपने काम की कोई दलील रखते होंगे जो हम नहीं जानते।
मैं जाकर उनसे बात करना चाहती हूँ।
किससे?
इन्हीं डॉक्टर पजुहान से।
जाकर क्या कहेंगी?
मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी के ऑपरेशन न करने की कोई ठोस दलील हमें दें।
ऐसा करना जरूरी नहीं है।
इत्तेफाक से बहुत जरूरी है डॉक्टर साहिबा। जब से डॉक्टर पजुहान ने हमारे साथ वो काम किया है, अस्पताल के सब लोग हमें किसी और नजर से देखते हैं। सब ये सोचते हैं कि हमारा कोई मसला था जिसकी वजह से डॉक्टर पजुहान ने अचानक ऐसा किया।
इसलिए कि सबको यकीन है कि डॉक्टर पजुहान अपनी इतनी शोहरत और माजी के बिना पर किसी खास वजह के बगैर ऐसा काम ना करते, खुसूसन इस वक्त जब वो एक और मरीज का मुफ्त ऑपरेशन करना चाहते हैं।
अब हर एक पर यह साबित हो जाएगा कि मैं और मेरी बेटी में कोई नख जरूर है। डॉक्टर पजुहान ने ऐसा काम किया है कि सब हमारे बारे में मशकूक हो गए, हमारे बारे में बुरा सोचते हैं। डॉक्टर साहिबा,
तुम कुछ ज्यादा हंगामा कर रही हो। कोई भी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचता, और मैं नहीं समझती कि तुम्हें डॉक्टर पजुहान के पास जाना चाहिए। उनके पास जाके क्या कहोगी? वो पलट कर कह देंगे कि तुमसे मरबूत नहीं, मेरी मर्जी कि मैं किसी का मुफ्त इलाज करूं। हाँ, इन दिनों सिर्फ तुम नहीं हो जिसको उनके रवैये ने परेशान कर रखा है। उन्होंने बहुत से दूसरे लोगों को भी अपने बुरे रवैये से रंजीदा किया है। ज्यादा परेशान ना हो, सिर्फ सब्र करो। सब्र करने से बहुत सी चीजें ठीक हो जाती हैं।
मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया सिवाय इज्जत और आबरू के। डॉक्टर पजुहान ने एक ही झटके में सब कुछ खराब कर दिया। किस वजह से, किस जुर्म में? यानी मेरी बेटी की एक सूदखोर जितनी भी अहमियत नहीं थी कि जिसकी दौलत के बारे में भी पता नहीं कि कितनी है।
सूदखोर? सूदखोर कौन है?
यही परवेजी कि जिसका डॉक्टर पजुहान इतनी तगदो कर रहे हैं उसके लिए। उसके साले ने इतना सूद दिया है कि उसके खून का प्यासा हो गया है, इसीलिए अपनी बहन से कह रहा था कि छोड़ो उसे, मरने दो। अब आप समझ रहे कि क्या कह रही हूँ मैं। अगर दूसरे लोगों को पता चल गया कि डॉक्टर पशुहान ने एक सूदखोर का मुफ्त ऑपरेशन किया है लेकिन अलीपुर की बेटी को ऑपरेशन नहीं किया।
इन तमाम चीजों के मद्देनजर पशुहान से बात करने का कोई फायदा नहीं है।
जी
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर।
वालेकुम सलाम।
माफ कीजिएगा अलीपुर, डॉक्टर सारमी को तुमसे काम है।
इजाजत दें डॉक्टर साहब।
ये तो बहुत सीरियस है, शॉक लगाना पड़ेगा, शॉक चार्ज करें।
डॉक्टर, डॉक्टर उठिए, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर।
फिर से तैयार करें, दोबारा शॉक लगाना।
یک سان بودی